पूर्व पाठ में मोक्ष की चर्चा की गई थी और वह चर्चा अभी जारी ही रहेगी। अभी तक मोक्ष के उपाय नहीं बताए गए, वो उपाय बताए जाएंगे। तो पिछले पाठ में ये हुआ था कि दुख जो है वह 21 प्रकार का दुख होता है और 21 प्रकार के दुख की जो आत्यंतिक निवृत्ति है उसी का नाम है मोक्ष। आत्यंतिक निवृत्ति में मैंने पारिभाषिक रूप से बताया था कि दुख का जो पूर्व में न होना है वही है आत्यंतिक निवृत्ति। तो आत्यंतिक निवृत्ति मतलब दुख का पूर्व में न होना, और ये कब संभव है तो अंतिम जन्म के बाद संभव है। तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति जो है अंतिम जन्म के बाद ही होती है, और वही जो है जब आत्यंतिक निवृत्ति होती है उसी का नाम है मोक्ष। तो एक जो कल आया था पाठ में कि एक विंशत प्रभेद भिन्नस्य दुखस्य, ये दुख का ही ये विशेषण है, एक विंशत प्रभेद भिन्न माने 21 प्रकार के भेद से जो भिन्न है, माने 21 प्रकार के भेद से जो युक्त है दुख, उस दुख की जो आत्यंतिक निवृत्ति है उसको हम मोक्ष कहते हैं, उसको हम अपवर्ग कहते हैं। अब आगे स्वयं प्रश्न करके उत्तर देते हैं, कहते हैं कि स पुनः अपवर्ग कथम भवति, यह जो अपवर्ग है, यह जो मुक्ति है, मोक्ष है, ये कैसे मिलती है? तो कहते हैं उच्यते। अब यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि शास्त्रात विदित समस्त पदार्थ तत्वस्य, ताकि शास्त्र को पहले पढ़ना है। शास्त्र को पढ़ने से क्या होगा कि विदित समस्त पदार्थ तत्वस्य, माने जितने भी पदार्थ हैं सारे पदार्थों के तत्व का ज्ञान पहले होता है। किससे होता है? शास्त्र पढ़ने से होता है। तो शास्त्र के अध्ययन से विदित समस्त पदार्थ तत्व होता है, माने सारे पदार्थों का तत्व जो है उसका वह विदित हो जाता है, वह प्राप्त हो जाता है, तत्व का लाभ होता है। फिर विषय दोष दर्शनेन विरक्तस्य, उसके बाद जितने भी विषय हैं रूप रसादि विषय, उसमें दोष का दर्शन होता है, और उस दोष के दर्शन होने से फिर विरक्तस्य, फिर व्यक्ति क्या होता है, विरक्त हो जाता है। विरक्त हो जाता है माने उन विषयों से जो है ना दूर होता चला जाता है। तो विषय में दोष का दर्शन करने से क्या होता है, व्यक्ति विरक्त हो जाता है माने विषयों से दूर हो जाता है। और ऐसा जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है, वह मुमुक्षु व्यक्ति, अभी तक दो चीजें हुई हैं, एक तो शास्त्र पढ़ करके उस मुमुक्षु को क्या हुआ है, समस्त पदार्थ के तत्व का ज्ञान हुआ। उसके बाद ज्ञान होने के बाद उसने क्या विषय में जो है ना उनको दोष दर्शन होने लगा, रूप रसादि में जो है ना दोष दिखाई देने लगा, फिर उस देखने से जो है ना वह विरक्त हुआ, उनसे दूर हटा। दूर हटने के बाद वो मुमुक्षु बना, माने मोक्ष की इच्छा उसमें जागृत हुई। फिर उसने क्या किया, फिर ध्यान लगाना शुरू किया। और ध्यान लगा, ऐसा तो है नहीं कि आज ध्यान लगाना शुरू किया आज ही फल मिल जाएगा। तो एक दिन ध्यान लगाते लगाते क्या होगा, ध्यान का परिपाक होगा, माने जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तब ध्यान के परिपक्व होने के बाद साक्षात कृत आत्मनः, वह आत्मा का जो है ना वह साक्षात्कार करेगा, माने आत्मा को वह देखेगा। फिर क्लेशहीनस्य, क्लेश से हीन माने क्लेश से रहित, निष्काम कर्म अनुष्ठानात्, फिर वो क्या करेगा, क्लेश से रहित जो है निष्काम कर्म का अनुष्ठान करेगा। निष्काम कर्म समझते हैं ना कि बिना किसी कामना के जो कर्म का अनुष्ठान होता है उसको कहते हैं निष्काम कर्म अनुष्ठान। तो उसके बाद वह क्या करेगा, तो क्लेशहीन होकर के, दुख से रहित होकर के निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करेगा। और अनुष्ठान करने के बाद अनागत धर्म अधर्मौ अनर्जयतः, इससे क्या होगा कि अनागत माने भविष्य में होने वाला जो धर्म और अधर्म का अर्जन है उससे वह दूर हो जाएगा। माने जब ही निष्काम कर्म का अनुष्ठान करेगा तो धर्म अधर्म होगा, और निष्काम कर्म का अगर अनुष्ठान करेगा तो उसे धर्म अधर्म का अर्जन उसे नहीं होगा। और अनर्जयतः पूर्वोपात्तंच धर्माधर्म प्रचयम, और पहले से जो धर्म और अधर्म का प्रचय है, धर्म और अधर्म जो पहले से संचय किया गया है उसका योगार्धि प्रभावात विदित्वा, योगार्धि माने योग रूपी रिद्धि से, योग रूपी बल से क्या करेगा, विदित्वा जान करके क्या करेगा, समाहृत्य भुंजानस्य, समाहृत माने एक ही साथ जो है ना सारे धर्म और अधर्म का जो प्रचय है उससे होने वाला जो दुख सुख है उसका भुंजानस्य, उसका वह भोग कर लेगा एक ही साथ। समाहृत्य भुंजानस्य, समाहित भुंजान माने एक ही साथ सारे सुख दुखों का भोग कर लेगा। फिर पूर्व कर्म निवृत्तो, इससे क्या होगा, भोग कर लेने से पूर्व में जो कर्म है कि उसका संचित कर्म उसकी निवृत्ति हो जाएगी। और वर्तमान शरीर अपगमे, और वर्तमान जो ये शरीर है इसका जब अपगम हो जाएगा या शरीर जब नष्ट हो जाएगा, फिर अपूर्व शरीर अभावात, फिर जो है इसमें अपूर्व शरीर का अभाव होगा। इस वो शरीर क्यों होता है मनुष्य का वो या किसी का, वो इसलिए होता है कि वह भोग भोगे, तो भोग अगर भोगने के लिए बाकी रहेगा तो शरीर की प्राप्ति होगी, और भोग अगर सब खत्म हो चुका है क्योंकि योग के प्रभाव से उसने क्या किया है, जितना भी भोग था उसको एक साथ ही भोग लिया, और आने वाला तो उसको भोग कोई है नहीं क्योंकि वह निष्काम कर्म कर रहा है, तो इस तरह से भोगने के लिए भोग बचेगा नहीं, तो फिर अपूर्व शरीर का अभाव होगा। और एक विंशति दुख संबंधो न भवति, फिर जब शरीर ही नहीं रहेगा तो एक विंशत प्रकार का जो दुख है वो जो बताया गया था, शरीर सत इंद्रियाने सद विषया सद बुद्धया सुखम दुखम च, इस तरह के जो एक विंशत प्रकार के दुख हैं उसके साथ व्यक्ति का संबंध न होगा, क्योंकि कारण अभावात, क्योंकि इनके संबंध होने के लिए शरीर तो चाहिए ना, तो शरीर रूपी कारण जो है उसके बाद रहता नहीं है। स्वयं इंग एक विंशति प्रभेद भिन्न दुख हानिर्मोक्षः सह अपवर्ग इत्युच्यते, इस तरह से ये जो एक विंशति भेद वाला जो दुख है, इस दुख की जो हानि है, इस दुख से जो मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है, और यही मोक्ष जो है अपवर्ग कहलाता है। यहाँ पर मैंने पंक्त्यर्थ तो बताया ये, और समझने वाली बात ये है कि तीन तरह के जो है ना कर्म होते हैं, संचित कर्म, संचीयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। फिर से मैं बताऊं, संचित कर्म, संचीयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो है जो पूर्व जन्म, बहुत सारे पूर्व जन्मों में उपार्जित जो है ना कर्म, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। संचीय का संचीयमान कर्म होता है कि इस जन्म में जो हम संचय करते हैं कर्म, वो हो गया संचीयमान कर्म। और प्रारब्ध कर्म वो होता है कि जिस कर्म का भोग करने के लिए ये जन्म हुआ है अपना, या इस जन्म में भोग करने के लिए जो कर्म है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो तीन प्रकार का कर्म हुआ, पूर्व जन्मों में संचित कर्म, और इस जन्म में जो संचित हो रहा है वह संचीयमान कर्म, और जिन कर्मों को का भोग करना है इस जन्म में हमें, वो हुआ प्रारब्ध कर्म। तो इन तीनों कर्मों का जो है ना जब खात्मा होगा तब जाकर के जो है ना ये शरीर पुनः मिलेगा नहीं, और शरीर नहीं मिलेगा तो 21 प्रकार के जो दुख हैं वो दुख भी नहीं होंगे, क्योंकि दुख के अनुभव में, दुख के भोग में जो है ये शरीर ही साधन होता है, शरीर के कारण ही तो दुख का अनुभव होता है, शरीर ही नहीं रहेगा तो दुख का अनुभव होगा कैसे। अब ये जो तीन तरह के कर्म है, ये तीन तरह के कर्म कैसे मिटेंगे इसको देखिए, क्योंकि ये कर्म जब तक रहेगा तब तक जन्म होता ही रहेगा, इसलिए इस कर्म का जो है ना का भोग खत्म करना है। कैसे होगा ये, इसमें कहा कि पहले शास्त्र पढ़ करके पदार्थ के तत्व का ज्ञान करें, फिर उसके जो है ना उसमें विषय उसके विषय में दोष का दर्शन करें, दोष को ढूंढें कि अरे इससे ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह से विरक्त होकर के फिर ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान जब काफ़ी उसमें आप परिपक्व होंगे उसके बाद आपको जो है ना आत्मा का साक्षात्कार होगा, फिर आप क्या करेंगे तो निष्काम कर्म करेंगे। ये निष्काम कर्म करने से क्या होगा ना, वो जो संचीयमान कर्म जो है, माने दूसरे भेद, दूसरा भेद जो है कर्म का, संचित, संचीयमान और प्रारब्ध, वो जो दूसरा जो संचीयमान कर्म है उसका उपार्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम निष्काम कर्म करेंगे ना, जब सकाम कर्म करते हैं तो वहां पर जो है धर्म अधर्म का उपार्जन होता है, जब निष्काम कर्म करेंगे तो धर्म अधर्म का उपार्जन होगा नहीं। तो इस तरह से निष्काम कर्म करने से धर्म अधर्म का उपार्जन नहीं होगा, इस तरह से संचयमान कर्म वहां पर ब्रेक लग जाएगा संचयमान कर्म में, क्योंकि हमने निष्काम कर्म करना शुरू कर दिया है। निष्काम कर्म करना मतलब बिना किसी कामना के कर्म करना, ये करना चाहिए इसलिए करता हूँ, इसका लाभ हो या हानि हो इससे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह के भाव से जो कर्म होता का अनुष्ठान होता है वो होता है निष्काम कर्मानुष्ठान। तो निष्काम कर्मानुष्ठान जब व्यक्ति करेगा तो संचयमान कर्म पर ब्रेक लग जाएगा, वह रास्ता बंद हो जाएगा। अब बचा दो प्रकार का कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म जो है ना, उसके लिए बताया न्याय शास्त्र में कि योग के प्रभाव से वो पहले व्यक्ति देख लेगा कि कितना जो है हमारा संचित कर्म है, और वो देख करके एक ही साथ क्या करेगा, सारे कर्म का वह योग के प्रभाव से भोग कर लेगा। इस तरह से भोग कर लेने से सारे संचित कर्म का भी जो है वह नाश हो जाएगा, कर्म का भोग वो सारा खत्म हो जाएगा। अब बच गया प्रारब्ध कर्म। जब प्रारब्ध कर्म जो बचा उसको तो इस जन्म में भोग करना है ना, तो वो हम सारे कर्मों को जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हम उसको भोग कर लेंगे। इस तरह से भोग कर लेने से और निष्काम कर्म कर लेने से संचित संचयमान प्रारब्ध, ये तीनों प्रकार के कर्म जो है ना वो नष्ट हो जाते हैं। और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो इसी का भोग करने के लिए तो व्यक्ति का जन्म होता है, तो वो व्यक्ति का फिर जन्म भी नहीं होता, आज जन्म नहीं होता, शरीर नहीं मिलता उसको, तो एक विंशत प्रकार का जो दुख है उस दुख के साथ संबंध नहीं हो पाता, उसको दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाती है। इस प्रकार से ये जो है न्याय शास्त्र में ये मोक्ष का तरीका बताया गया कि कैसे जो है मोक्ष मिलती है, मोक्ष क्या होता है। तो उसमें 21 प्रकार के दुखों का अभाव जब हो जाता है तो उसी का नाम है मोक्ष। और वो कैसे होता है, तो अंतिम जन्म के बाद होता है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि एकस्मिन धर्मिनी विरुद्ध नाना अर्थावमर्शः संशयः। आपको ध्यान होगा कि पीछे कहा था ना कि अयथार्थ जो बुद्धि है वह मतलब वह तीन प्रकार की होती है, कि उसमें एक विपर्जय बताया था, एक संशय बताया था, और भी एक कुछ कहा था। तो उसके लिए कहा था ना कि ये दो हम बाद में बताएंगे, और अभी जो है ना हम मैं विपर्जय को बता रहा हूँ। तो विपर्जय को तो उन्होंने वहाँ पर बता दिया, और बाकी जो दो रह गए थे उन दो को जो है अब जो है इन्होंने कहना शुरू किया है तत्भाषाकार ने। इनकी अपनी एक शैली है कि कब जो है किस बात को हमें कहना है। तो उस समय में संशय तर्क और विपर्जय की बात आई थी, तो कहा था कि संशय तर्क को बख्शिए थे, संशय और तर्क को बाद में बताएंगे, और विपर्जय के लिए बताया अतस्मिन तदग्रह भ्रमा इति यावत। तो अब जो है ना वही तर्क संशय और तर्क को बताएंगे। तो संशय का सबसे पहले लक्षण कर रहे हैं, बता रहे हैं, एकस्मिन धर्मिनी विरुद्ध नाना अर्थावमर्शः संशयः। एक धर्मी में, धर्मी तो समझते हैं ना जिसमें धर्म रहता हो, तो एक धर्मी में विरुद्ध जो नाना प्रकार का जो अर्थ है, माने धर्म, यहाँ पर अर्थ का अर्थ लेना है धर्म, तो एक धर्मी में विरुद्ध माने विपरीत अनेक प्रकार का जो धर्म है उसका अवमर्श होना, उसका ज्ञान होना ही संशय कहलाता है। अर्थात एक धर्म, जैसे मान लीजिए एक वो ठूठा पेड़ है, तो ठूठा पेड़ जो है वो धर्मी है, उस धर्मी में अनेक प्रकार का जो है ना विरुद्ध धर्म, माने यह जो है खंभा है आ कि यह जो है ना मनुष्य है इस तरह, या पुरुष है इस तरह का, जो पुरुषत्व है या स्थाणुत्व है, इस तरह से नाना धर्म है दोनों, नाना माने एक से अधिक अनेक धर्म, तो स्थाणुत्व और पुरुषत्व धर्म ये क्या है, नाना धर्म हो गए और विरुद्ध भी हैं। जहाँ पुरुषत्व होगा वहाँ स्थानुत्व नहीं होगा, जहाँ स्थानुत्व होगा वहाँ पुरुषत्व नहीं होगा। और एकस्मिन धर्मिनी, एक धर्म पकड़ लीजिए, लंबता है, लंबा खरा जो रहता है, तो लंबता धर्म से युक्त जो कुछ दिखाई दे रहा है अंधेरे में, थोड़ी दूरी से, वह जो धर्मी है लंबता धर्म से युक्त जो धर्मी है, उस धर्मी में विरुद्ध जो नाना अर्थ का अवमर्श होता है, माने विरुद्ध नाना अर्थ हो गया स्थानुत्व अर्थ और पुरुषत्व अर्थ, इसका जो अवमर्श हुआ माने इसका जो ज्ञान हुआ, यही जो ज्ञान है वह संशय है। तो एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का अवमर्श होना संशय कहलाता है। वह संशय तीन प्रकार का होता है, सच त्रिविधा विशेष अदर्शने सति समान धर्म दर्शन जह विप्रतिपत्ति जह और असाधारण धर्म जश्च। वह जो संशय है एक तो होता है विशेष अदर्शने सति, माने विशेष का जहाँ दर्शन न हो, और समान धर्म दर्शन जा और समान धर्म का जहाँ दर्शन हो तो वहाँ पर भी एक संशय होता है, माने समान धर्म का दर्शन हो और विशेष धर्म का दर्शन अगर न हो तो वहाँ पर भी संशय होता है। दूसरा है विप्रतिपत्ति जा, विप्रतिपत्ति से जहाँ उत्पन्न हो ज्ञान उसको भी हम कहते हैं संशय। और तीसरा कहा असाधारण धर्म जहा, असाधारण धर्म माने विशेष धर्म, तो विशेष धर्म से जो उत्पन्न हो संशय वह हो गया असाधारण धर्मज संशय। अब इन तीनों को उदाहरणों के द्वारा बताएंगे। तत्र एको विशेष अदर्शने सति समान धर्म दर्शन जह, माने विशेष का दर्शन न हो समान का दर्शन हो ऐसा संशय होता है, जैसे स्थानुर्वा पुरुषोवा, माने यह स्थानु है या पुरुष है। स्थानु के बारे में स्थानु ऐसे कहते हैं खंभे को, खंभे को भी कहते हैं, और ये ठूठा जो पेड़ होता है जिसमें डालियां वालियां नहीं होती हैं उसको स्थानु कहा जाता है। तो वह जो दिखने वाला धर्मी है सामने में, उसमें जो स्थानु बा पुरुषो बा इस तरह का जो ज्ञान होता है वह पहला भेद है। कौन? विशेष दर्शन, विशेष अदर्शने सति समान धर्म दर्शन जा। एकस्मिन एव ही पूर्ववर्तिनी द्रव्य, इसमें क्या बताते हैं आगे कि एक ही जो पूर्ववर्ती द्रव्य है माने सामने में दिखाई देने वाला जो द्रव्य है उसमें स्थानुत्व निश्चायकम, माने यह स्थानु है ऐसा निश्चय रूप से बताने वाला वक्र कोटर आदिकम, माने वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा हो या उसमें कोटर आदि हो तो ये देख करके व्यक्ति निर्णय कर लेगा कि ये स्थानु है, लेकिन वो नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से पुरुषत्व का निश्चायक भी वहाँ नहीं दिखाई देता, जैसे सिर दिखाई दे हाथ पांव दिखाई दे तो वो भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता। इस तरह से विशेष का यहाँ पर अदर्शन होता है, ठीक है। और समान धर्म जो है उसका दर्शन होता है, क्या? तो स्थानु और पुरुष में समान धर्म क्या है? तो ऊर्ध्वत्व आदि, ऊर्ध्वत्व माने उच्चता ऊंचाई, तो ऊंचाई वाला धर्म जो है वह स्थानु और पुरुष में समान धर्म है, और विशेष धर्म जो है वक्र कोटर आदि अथवा सिरह पानी आदि वह विशेष धर्म है। तो विशेष धर्म का वहाँ दर्शन नहीं होता, समान धर्म जो ऊर्ध्वत्व लंबत्व आदि है उसका दर्शन होता है, इसलिए वहाँ पर व्यक्ति को संशय होता है कि किम अयम स्थानु वा पुरुषो वा, क्या यह स्थानु है या यह पुरुष है। तो इस तरह से आपने देखा कि वह जो सामने वाला द्रव्य है उसमें उस धर्मी में द्रव्य में धर्मी माने द्रव्य उस द्रव्य में धर्मी में विशेष जो था उसका दर्शन नहीं हुआ, विशेष मतलब वक्र कोटर आदि और सिरह पानी आदि का दर्शन नहीं हुआ, साधारण जो था ऊर्ध्वत्व लंबत्व उसका दर्शन हुआ, और इससे संदेह हुआ स्थान उर्वा पुरुषो वा। यह जो है संशय का प्रथम भेद है। आज का पाठ यहीं रखते हैं।